अवणमोकार में जो अरहंत परमेष्ठियों को किया गया नमस्कार था, जिस पर अपन महीने भर से आगम के बड़े सुंदर सुंदर रहस्य सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक ऐसी जानकारी भी आती है कि जिसमें अरहंत परमेष्ठी की पहचान यदि यथार्थ रूप से हो जाए तो जिसको पहचान हो चुकी है वह जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है, उसका मिथ्यात्व समाप्त हो जाता है। वो कैसे होता है, उसकी क्या भूमिका है, विधि तो नहीं कह सकते क्योंकि ये अलौकिक रत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इनको प्राप्त करने की कोई ऐसी विधि तो संभव नहीं है। जीव सम्यक तो अश्नुते लहई सम्मतम, ऐसा वर्णन तो शास्त्रों में आता है, जीव सम्यक को प्राप्त हो जाता है, जीव को सम्यक तो प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन तो आता है, लेकिन जीव इस विधि से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि विधि एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, एक मेथड होती है। और यदि उस प्रक्रिया से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता तो उसको सभी लोग सीख लेते और उस विधि को सीख करके सारे जीव सम्यक दृष्टि बन जाते, पर सारे जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन पाते। अपने एक एक जीव के भाव परिवर्तन का वर्णन जब अपन पढ़ते हैं, तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में एक सूत्र है, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी जीव और मुक्त जीव, ऐसे दो जीव हैं, दो प्रकार के जीव हैं। तो जब अपन वो वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें संसारी जीव कौन है, तो बोलते हैं कि जो पांच प्रकार से संसार में भटक रहे हैं, पंचविध संसार में जो निरत हैं, फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, भटक रहे हैं, वे जीव संसारी जीव हैं। अब उन पांच संसारों में जो भव परिवर्तन नामक संसार है उसका वर्णन बड़ा विकट है। वैसे तो सारे पांचों प्रकार के जो संसार हैं वो बहुत ही भयंकर है, लेकिन भाव परिवर्तन के वर्णन में आचार्यों ने कहा है कि चार गति संबंधी इस जीव के अनेक भाव होते हैं। ये जीव जब चारों गतियों को प्राप्त है तो इन चार गतियों में ये अनेक प्रकार के भावों को प्राप्त होता है, और भाव की जो सीमा है वो कालावधि के आश्रित है। अपन कितने समय तक एक भाव में रह सकते हैं, तो उसका समाधान है कि जब तक उस भाव संबंधी आयु का उदय रहेगा तब तक आप उस भाव को छोड़ नहीं सकते, उसी भाव में रहेंगे। तो भाव परिवर्तन के वर्णन में बताया है कि जब देव पर्याय में 16वें स्वर्ग से ऊपर वाले भावों को, यानी 9 ग्रहवेयकों के पर्यायों को कोई जीव प्राप्त करता है तो वो कितनी बार प्राप्त कर सकता है और उस पर्याय में कितनी अवधि तक एक एक भाव को धारण कर सकता है, यानी उसके एक एक भाव की अवधि कितनी हो सकती है। तो उसका समाधान है कि 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 22 सागरूपम है, और 22 सागर से अधिक आयु उन्हीं को प्राप्त होती है जो मनुष्य जीवन में मुनि दीक्षा लेकर महाव्रतों का शुक्ल लेश्या के साथ आयुबंध के समय पालन कर रहे होते हैं, और जिनका संघनन ऊपर के 3 संघननों में से कोई एक हो वही वहां जा सकते हैं। नीचे के जो 3 संघनन का अर्थ अस्थि बंधन होता है, तो नीचे के 3 संघनन वाले नहीं जा सकते ग्रेवयक में, ऊपर के 3 संघनन वाले ही जा सकते हैं। तो इतने कठिन नियमों के साथ जो निर्ग्रंथ पद का पालन करते हैं, जो तप को धारण करते हैं और जिनकी बाह्यचर्या में आपको कोई ऐसा प्रसंग देखने नहीं मिलेगा कि जिससे आपको लगे कि ये क्या हो रहा है, आपको लगेगा कि बहुत उत्कृष्ट साधना हो रही है। ऐसे मुनिराज ग्रेवेक जाते हैं और उनमें कई सम्यक दृष्टि भी होते हैं, कई भावलिंगी मुनि भी होते हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जिनको मुनि पद के योग्य भाव न होकर श्रावक जैसे भाव है, लेकिन चर्या मुनि की पाल रहे हैं। वो भाव कई बार अपने को स्वयं पता नहीं चलता, इतने स्थूल भी नहीं होते वो भाव कि एकदम पकड़ में आ जाए अपने, पर वो सब केवली भगवान और बड़े प्रत्यक्ष ज्ञानी लोग जानते हैं। तो मुनि पद होते हुए भी मुनि का गुणस्थान न हो तो उस मुद्रा को द्रव्य लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है साधु का वेश, तो वो जो वेश है उनका वो साधु का है, लेकिन भाव साधु वाले न हो तो उसको द्रव्य लिंग कहते हैं, और भाव साधु वाले हो तो भाव लिंग कहेंगे। द्रव्य लिंग सहित भाव लिंग माना जाएगा वो। द्रव्य लिंगम समास्थाय भावलिंगी भवेत पुनः भवेद्यति ही। नीति सार में आचार्य इंद्रनंदी लिखते हैं कि द्रव्य लिंगम समास्थाय, द्रव्य लिंग में भली प्रकार आस्थित होकर विराजमान होकर भावलिंगी भवेद्यति, यति भावलिंगी हो सकते हैं, हो जाए ऐसा नियम नहीं है। और वही वर्णन हम आपके सामने रख रहे थे कि अनादिकाल से ये जीव 16वें स्वर्ग से ऊपर कितनी बार जा चुका है, तो भाव परिवर्तन में ऐसा उल्लेख है कि 16वें स्वर्ग के ऊपर एक समय अधिक की आयु को लेकर भी ये जीव जा चुका है, 2 समय अधिक की आयु को लेकर भी जा चुका है, 3 समय अधिक आयु को लेकर भी जा चुका है, संख्यात और असंख्यात समय अधिक आयु लेकर भी वह जा चुका है। और ऐसे रैंडम यानी अक्रम से तो बहुत बार गया है, लेकिन यदि उसको क्रम से गिना जाए तो कई बार गया ग्रहवेक कोई जीव, फिर उसको जितनी आयु जगन्य आयु प्राप्त हुई थी 22 सागर में एक समय अधिक आयु उसको जो प्राप्त हुई थी उससे एक समय अधिक आयु प्राप्त होती है, तो फिर उसकी गणना भाव परिवर्तन में की जाती है। काल जितना भी निकल गया हो बीच में, लेकिन अब उसका एक सीढ़ी ऊपर पैर चला गया, इसके बाद अब नीचे के 2 समयों वाली गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर इसके बाद कभी भविष्य में वही जीव 22 सागर और 3 समय अधिक की आयु को लेकर के उत्पन्न होगा तो फिर वो तीसरी सीढ़ी होगी। इस तरह करते करते क्रम से एक एक समय की वृद्धि करते हुए वह जीव अपनी देवगति संबंधी भाव परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हुआ जब क्रम से 31 सागर की आयु तक चला जाता है, 31 सागर की आयु तक जाने में कितना समय लगेगा इसका अनुमान आप इससे लगा लीजिए। असंख्यात समयों की एक आवली होती है और संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है। उच्छ्वास का अर्थ है नाड़ी की फड़कन। 3773, 3773 फड़कन 48 मिनट में होती है। तो संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है। तो एक आवली में जब असंख्यात समय है तो उस जीव को कितने भाव धारण करना पड़ेंगे जब असंख्यात समय ऊपर जाएगी आयु। 22 सागर में एक आवली अधिक आयु तक पहुंचने में उसको कितने असंख्यात भाव धारण करने पड़ेंगे। और जब अपन विचार करते हैं कि उन भवों को प्राप्त करने के लिए, ग्रैवेक में उत्पन्न होने के लिए साधुचर्या अनिवार्य है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि कम से कम असंख्यात में भी कई बार आप कोई गुणा कर दीजिए, उतनी बार मनुष्य पर्याय, मुनि पर्याय और उतनी सुंदर चर्या कि वहां तक चले जाए, तब जाकर के 22 सागर में एक आवली अधिक होगा समय। और ऐसी संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है, एक नाड़ी की फड़कन होती है। और 22 से 31 सागर तक की आयु बढ़ने के लिए 9 सागर कितनी विशाल अवधि है। उसमें क्रम से बढ़ाते हुए जब वो जीव उत्पन्न होता है तो उसके भाव कितने हो जाते हैं। एक भाव परिवर्तन में अपन नहीं जानते कितने भाव हो जाते हैं। और ये भाव परिवर्तन केवल अभव्य जीव नहीं करता, भव्य जीव भी करता है। पंच परिवर्तन रूप संसार केवल अभव्यों के लिए नहीं है, भव्यों के लिए भी है। दोनों संसारी प्राणी हैं और दोनों ही मिथ्यात्व के साथ संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं। और जब तक मोक्ष मार्गी बनकर कर्मों की निर्जरा और कर्मों का क्षय नहीं कर डालते तब तक संसारी तो रहना ही है। और साथ में यह भी बताया है कि उनका ज्ञान कितना होता है। कार्तिकेय अनुपरीक्षा की टीका में लिखा है कि द्रव्य सामायिक के प्रभाव से वो 11 अंग के पाठी होते हैं अभव्य मुनि। मिथ्या दृष्टि है, गुणस्थान उनका मिथ्यात्व है, क्योंकि इतने भाव सम्यक दृष्टि धारण नहीं कर सकता। मुनि पर्याय धारण करके सम्यक दृष्टि जीव संभव ही नहीं है कि इतना भटके। आचार्य अकलंक भट्ट ने तत्वार्थ वार्तिक में लिखा है, अप्रतिपतित सम्यक्त्वाह सप्ताष्ट भवैः सेत्स्यन्ति। जो सम्यक्त से पतित नहीं हुए हैं ऐसे जीव 7 अथवा 8 जन्मों में सेत्स्यन्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, उससे अधिक संसार में नहीं रह सकते हो। पर सम्यक्त के साथ एक समस्या ऐसी है कि सम्यक दर्शन जब तक अपने पास क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो जाता तब तक बाकी जो सम्यक दर्शन है वो प्राप्त होने के बाद छूट भी जाते हैं। औपशमिक सम्यक तो छूटता ही है, लेकिन क्षायोपशमिक सम्यक तो भी कई बार छूटता है। गिण्णदि मुंचति जीवो बेसम्मत्ते असंख्य बाराहु। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की मूल गाथा में लिखा है कि एक जीव अकेला मोक्ष जाने से पहले अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के भीतर, ये अधिकतम काल होता है संसार में। सम्यक दृष्टि जीव कोई है उसका सम्यक तो अगर छूट जाए तो तो वो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल अधिक से अधिक इस संसार में रह सकता है, उतने काल में वो जीव असंख्यात बार औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके फिर वापस मिथ्यात्म में पतित हो जाता है। असंख्यात बार, बहुत बड़ी बात है। तो कई बार ये जीव सम्यक के साथ भी ग्रहवेग जाकर संसार में भटक सकता है अगर सम्यक छूट जाए तो। लेकिन इतना लंबा जो भाव परिवर्तन है वो केवल मिथ्या दृष्टि करता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन से अधिक काल, द्रव्य परिवर्तन का भी आधा काल अधिकतम संसार में रह सकता है अगर सम्यक दर्शन हुआ और छूट गया तो। और ये तो उत्तर उत्तर बड़े परिवर्तन है। द्रव्य से बड़ा क्षेत्र परिवर्तन है, क्षेत्र से बड़ा काल परिवर्तन है, काल से बड़ा भाव परिवर्तन है, और सबसे बड़ा भाव परिवर्तन है। तो भाव परिवर्तन में वो क्रम से एक एक समय आयु बढ़ाते हुए 22 सागर से अधिक और 31 सागर तक जब तक पहुंचता है तब तक उसके भावों की कोई सीमा नहीं रह जाती, और फिर वहां से आकर वापस संसार में भटक जाता है। अभव्य जीव का तो कोई अंत ही नहीं है, उसको तो कभी सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं हो सकता। ऐसे भी जीव हैं संसार में कि जो अभव्य कहलाते हैं, भवितुम योग्यः भव्यः न भव्यः अभव्यः सम्यक दर्शनादि पर्यायेण भवितुम योग्यः भव्यः। भव्य की क्या परिभाषा है? जो जीव सम्यक दर्शन अधिक पर्यायों के साथ परिणमन करने के योग्य है उसे भव्य कहते हैं, और जो उसके अयोग्य है अर्थात जिस जीव के पास सम्यक्त को प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है वो अभव्य जीव है। पर सुनकर इतना आगम को सुनकर ऐसा लगता है कि अभव्य जीव तो अप्रतिकार अर्थात उनका कोई उपचार नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता उनके लिए। पर एक इतनी राहत है कि अभव्यों की गणना, अभव्यों की राशि भव्यों से बहुत बहुत अल्प है। भले ही अनंत है अभव्य जीव, लेकिन अनंत होते हुए भी एक विद्वान पंडित रतनलाल जी इंदौर वाले उदासीन आश्रम वाले, उन्होंने कहा था कि अगर अपन जैन गणित से देखें तो जो मनुष्यों की राशि बताई 29 अंक प्रमाण, 1 से 9 तक 1 अंक प्रमाण संख्या कहलाती है, 10 से 99 तक 2 अंक प्रमाण संख्या कहलाती है, 100 से लेकर 999 तक 3 अंक प्रमाण संख्या कहलाती है, ऐसे 29 अंक प्रमाण समूचे विश्व में मनुष्यों की गणना होती है, संख्यात है वो। तो उतनी संख्या में अगर अभव्य राशि को विभाजित किया जाए चारों गतियों में तो मनुष्य गति में एक काल में 2 या 3 अभव्य जीव हो सकते हैं। इतने सारे मनुष्य हैं उनमें अधिकांश भव्य हैं, 2-3 अभव्य हो सकते हैं, ऐसा उनका एक विचार था। और विद्वज्जन इस पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, और भी खोज हो सकती है इस पर। तो अभव्य राशि अल्प है, लेकिन जो है वो अनंत संसारी है। कितना भयानक लगता है ये सुनकर के, जब एक भाव के कष्ट सहन करना मनुष्य को भारी पड़ जाता है तो फिर जिसके भावों का अंत ही नहीं है उसके कष्टों का क्या कहना। अपन थोड़े से कष्ट में विचलित हो जाते हैं, उन जीवों के कष्टों का विचार करें कि जिनके कष्टों का अनंत काल तक कभी अंत नहीं हो सकता। तो भव्य जीव भी ग्रहवेग में कई बार चला जाता है। पंडित दौलत राम जी ने छह डाला में दो बार ये कथन किया है। कि ये जीव अनंत बार ग्रहवेग जा चुका है, जिस जीव ने भव परिवर्तन और ये पंच परिवर्तन किए हैं वो जीव अनंत बार ग्रहवेग जा चुका है, और वो केवल अभव्य की बात नहीं है, भव्य भी जा चुका है। और वो पंक्ति कौन सी है? एक तो 12 अनुप्रेक्षाओं में पांचवी ढाल में उन्होंने लिखा है, अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम ग्रहवेग तक की सीमा को इस जीव ने अनंत बार प्राप्त किया है, लेकिन सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, वो अपने आप में दुर्लभ है। सो हे मुनि, मुनिराज अपने अंदर ये अपने आप से कह रहे हैं कि हे मुनि, उसको साध लो, उसको हासिल कर लो, उसको प्राप्त कर लो। ज्ञान प्राप्त कर लेने से हो सकता है कभी श्रद्धा उसमें समा जाए, और यदि श्रद्धा जाग गई तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो प्रवचन सार ग्रंथ में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने एक घटना बताई है कि जो अपने नमो अरहंताणम बोलते हैं उनमें अगर पहले ही पद में केवल अरहंत भगवान को व्यवस्थित जान लो, उनको जान लो, पहचान लो, तो काम बन जाएगा। भले ही काम दुर्लभ है, लेकिन प्रयत्न करने में क्या हानि है, बल्कि लाभ है। आचार्य कहते हैं, कह रहे हैं वो, कोई विधि नहीं बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, जो जानदि अरहंतम दवत्त गुणत पज्जयते ही सो जानदि अपाणम मुहु खलु जादि तस्सलयम। तस्स मुहु खलु लयम जादि, उसका मिथ्यात्व नियमतः विनाश को प्राप्त हो जाता है जो अरहंतम जानदि, अरहंत को जान लेता है। पर कैसे जानता है, तो उसमें थोड़ी सी शर्त दी है उन्होंने। अभी अपन ने बहुत दिनों से अरहंत भगवान को ही जानने की चेष्टा की है, प्रयत्न किया है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि अरहंत भगवान को जो दवत्त गुणत्त पज्जयत्ते ही जानदि, कभी आपके कानों में भी ये चर्चा पहुंची हो, आपने भी कभी ये सुना हो कि जो द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत परमात्मा को जानता है, सो अपाणम जानति, वो आत्मा को पहचान लेता है। पर गाथा में इससे भिन्न कथन है, इसलिए जो आपने सुना है अथवा जो समझ लिया आपने, उसमें थोड़ा संशोधन अपेक्षित है। वो संशोधन क्या है? तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि जो द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जान लेता है वो आत्मा को जान लेता है। आचार्य कह रहे हैं कि जो द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व से अरहंत को जान लेता है वो आत्मा को जान लेता है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय से जान लेना और द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जान लेना, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इसका समाधान ये तो प्रवचन सार ग्रंथ की 80 क्रमांक गाथा है। अपने को थोड़ा और आगे बढ़कर क्या होता है कि एक गाथा और उसकी व्याख्या में अपन ये सोचे कि सब कुछ मिल जाए अपने को, तो ऐसा दुर्लभ है। कुछ आगे पीछे भी अपने को आलोड़न करना होता है, अपने को उस प्रसंग में आचार्य और क्या क्या कह रहे हैं उसको भी समझना होता है। तो चलें अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 86 में आचार्य कुंदकुंद स्वामी लिख रहे हैं। अमृतचंद सूरी ने उस पर जो भूमिका उत्थानिका लिखी उसमें ये लिखा है, अथ मोहक्षपणोपायांतरमालोचयति। अब आचार्य कुंदकुंद स्वामी मिथ्यात्व को नष्ट करने का एक दूसरा उपाय दिखलाते हैं। पहला उपाय क्या था? अरहंत को द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व से जान लो तो आत्मा की पहचान हो जाएगी, और आत्मा की पहचान हो जाएगी तो फिर दोनों की पहचान हो जाएगी, परमात्मा की भी हो गई और आत्मा की भी। और जो परमात्मा और आत्मा दोनों को पहचान लेता है, तस् मुंह खलु लयम जादी, उसका मिथ्यात्व नियम से विनाश को प्राप्त हो जाता है। अब विनाश के दो अर्थ होते हैं, एक तो उसका उदय विनष्ट हो जाता है, उसका उदय नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और दूसरा उसका जो बंध है अपनी आत्मा के साथ बंधा हुआ मिथ्यात्व वो ही नष्ट हो जाता है, क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाता है। पर क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने आगे चल करके अलग प्रकार से बताई है, वहां पर क्या घटना होती है वो बताइए। प्रक्रिया कहना एक अपेक्षा से थोड़ा अजीब सा लगेगा, वहां वास्तव में उन्होंने वो घटना बताई है कि कैसे क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है इस जीव को। तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिन सत्था दो अट्ठे पच्चखा दी ही बुझ दो नियमा खी यदि मोह वचयो तम्मा सत्थम समधिदव्वम। जैन शास्त्रों से पदार्थों को प्रत्यक्ष परोक्ष आदिक प्रमाणों द्वारा जानने वाला जीव नियमतः क्या करता है? कुछ नहीं करता, वो जानने का काम करता है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। वो जैन शास्त्रों से पदार्थों को जान लेता है, और उस जानने वाले जीव का मोहुव चो खी यदि, मोह का जो संग्रह है, मिथ्यात्व का जो समूह है, वह खी यदि नष्ट हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। तम्मा इसलिए सत्थम समधिदव्वम, शास्त्र का भली भांति अध्ययन करने योग्य है। तो यहां पर आचार्य अमृतचंद सूरि ने अपनी टीका में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, यत्किल द्रव्य गुण पर्याय स्वभावेन अर्हतो ज्ञानाद आत्मनस तथा ज्ञानम मोहक्षपणोपायत्वेन प्राप प्रतिपन्नम तत्खलूपायांतरमिदम अपेक्षते। जो वस्तुतः द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की अपेक्षा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, द्रव्य गुण पर्याय और द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व, इनमें अंतर इस पंक्ति से समझ में आ जाएगा। द्रव्य गुण पर्याय तो अपन जानते ही हैं, द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो गुण और पर्यायों से संपन्न है वह द्रव्य है, ठीक है। अब गुण क्या है? तो द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, जो द्रव्य को आश्रय रूप प्राप्त हैं, अर्थात द्रव्य ही जिनका सहारा है। गुण क्या है ये बतला रहे हैं कि द्रव्य ही जिसका आश्रय है, सहारा है, आलंबन है, और निर्गुणा जिनके अंदर कोई दूसरा गुण नहीं है वो गुण कहलाते हैं। ज्ञान में दर्शन गुण नहीं हो सकता, जीव में ज्ञान और दर्शन गुण दोनों हो सकते हैं। तो गुण हमेशा निर्गुण होते हैं, वो स्वयं अपने आप में एक गुण है, अपने अंदर किसी दूसरे गुण को वो धारण नहीं करते, लेकिन द्रव्य सभी गुणों को धारण करता है। जैसे अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण को आप चेतन कहोगे या अचेतन कहोगे? नहीं, चेतन अचेतन कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अस्तित्व मात्र अस्तित्व प्रदान करता है। लेकिन जीव को क्या कहोगे, चेतन या अचेतन? जीव को चेतन कहना होगा, क्योंकि उसके पास चेतना है, उसके पास ज्ञान और दर्शन गुण है। तो ये द्रव्य और गुण की बात हुई। पर्याय क्या है? तो आलाप पद्धति ग्रंथ में देवसेन आचार्य महाराज लिखते हैं, गुण विकाराः पर्यायाः। गुणों के जो विकार, यहां पर विकार का अर्थ कोई बुरे भाव नहीं है, लेकिन विशिष्ट कार्य रूप जो परिणमन है गुणों के, उनको पर्याय कहते हैं। गुण विकाराः पर्याय, जैसे ज्ञान गुण है, पर्याय क्या है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। पांच प्रकार की पर्याय होती है मति ज्ञान की, ये ज्ञान गुण की, ये पांच पर्याय होती है। फिर इनके और उत्तर भेद होते हैं, ये गुण पर्याय कहलाई। फिर द्रव्य पर्याय भी होती है। द्रव्य पर्याय क्या है? जैसे अपन कौन सा द्रव्य है? छह द्रव्यों में से अपन जीव द्रव्य है, ठीक है ना? तो जीव द्रव्य की जो पर्याय है वो देखो, आज कौन सी पर्याय चल रही है अपनी? मनुष्य पर्याय चल रही है। कई जीवों की देव पर्याय भी चल रही है। कुछ मध्यलोकवर्ती देव हैं, वो यहां आसपास रहते हैं, यहां विचरण करते हैं, तो उनकी देव पर्याय है। कुछ ऊर्ध्वलोकवासी देव हैं, वो वहां रहते हैं, अपने अपने स्थान है देवों के, तो वो भी जीव की पर्याय है। इसी तरह त्रियंश पर्याय भी हो सकती है जीव की। आज जिसको आप कुत्ता समझ रहे हैं या फिर कोई और जीव जंतु समझ रहे हैं, और अपने को आप मनुष्य समझ रहे हैं और उससे श्रेष्ठ समझ रहे हैं, यदि अपना इतिहास अपन देखें तो आपको पता चलेगा कि हम भी कई बार वहां रह चुके हैं। तो जीव जीव की अपेक्षा तो हम लोग एक ही द्रव्य हैं, लेकिन पर्याय पर्याय की अपेक्षा से हमारी पर्याय अलग अलग है। तो ये द्रव्य गुण पर्याय होती है। लेकिन यहां कह रहे हैं द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व का क्या अर्थ है? तो आचार्य कह रहे हैं कि द्रव्य गुण और पर्याय का जो स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव, इनकी अपेक्षा से जो अरहंत को जानता है, तो अरहंत के ज्ञान से आत्मनस तथा ज्ञान, अपनी आत्मा का भी वैसा ज्ञान हो जाता है। और वह ज्ञान जिसको होता है, तो कह रहे हैं मोह क्षपणोपायत्वेन प्राक प्रतिपन्नम। पहले ही इसको स्वीकार किया गया है कि ऐसा ज्ञान अगर किसी को हो जाए तो उसका मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। लेकिन तत् वह जो ज्ञान है, वह इदम उपायांतरम खलु अपेक्षते, इस दूसरे उपाय की नियम से अपेक्षा करता है। उपेक्षा नहीं, अपेक्षा करता है। अर्थात अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से जानने के लिए यह दूसरा उपाय अनिवार्य है। यह दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय यह है कि आप पदार्थों को प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों के द्वारा जिन शास्त्रों से पहचान लो, जान लो। शास्त्रों से ही अपन जान पाएंगे कि ये द्रव्य स्वभाव क्या वस्तु है, गुण स्वभाव क्या होता है, पर्याय स्वभाव क्या होता है। और शास्त्रों से जब अपन ये जान लेंगे कि ऐसा होता है, और फिर उससे आप अरहंत भगवान को जानिए। पर चूंकि अरहंत भगवान अधिक महत्वपूर्ण है, उन्होंने ही ये सारा उपदेश दिया है, इसलिए पहले उनका स्थान था। आचार्य कुंदकुन स्वामी ने कहला कि जो अरहंत को जाने सो आत्मा को जाने, परमात्मा और आत्मा को जो जाने सो सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। और इसको अपन विधि में सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है, ये एक अलौकिक घटना है, समझ लो आप। घट जाए तो घट जाए, न घटे तो अनंत पर्याय निकल जाए, लेकिन कुछ नहीं। ग्रहवेक में अनंत पर्यायों को प्राप्त करना कोई साधारण बात है? अति दुष्कर है। और फिर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में यह भी लिखा है कि द्रव्य सामायिक को प्रतिपन्न जो साधु हैं, 11 अंग के पाठी हैं, वो अभव्य भी 9वें ग्रहवेक में हेमिंद्र पद को प्राप्त हो जाते हैं। द्रव्य सामायिक का अर्थ क्या है? कि इन्होंने इतनी तपस्या की है, 6-6 महीने तक उपवास किए हैं, और भयंकर उपसर्ग आने पर भी क्या मजाल है कि उनके मुख से कराह की ध्वनि निकल जाए, इतने सहनशील है। सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन इतनी उनकी साधना है कि 6-6 महीने उपवास कर लेते हैं, कायोत्सर्ग में खड़े रह लेते हैं, और उपसर्गों को सहन कर लेते हैं। कष्ट आने पर समता धारण करते हैं, तब जाकर के वहां उत्पन्न होते हैं। सरल नहीं है 31 सागर की आयु में जाना, ग्रहवेक में उत्पन्न होना सरल कार्य नहीं है। पर उससे भी दुर्लभ ये सम्यक दर्शन है। तो आप सोच लो कि इतना कठिन काम करने पर भी जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अपन यहां 2-4 शास्त्र पढ़ करके आंख मूंद कर बैठ जाएंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? असंभव है। ये तो एक अलौकिक घटना है, हो जाए तो हो जाए। अपन बस आगम के एक अक्षर को भी इधर उधर न करते हुए यथावत स्वीकार करते चले जाएं, हो गया तो हो गया, और यदि हो गया तो वो सम्यक दर्शन आत्मा को परमात्मा बनाने में सक्षम है। क्योंकि जैसे सराग सम्यक दर्शन है प्राथमिक भूमिका में, उच्च भूमिका में वीतराग सम्यक दर्शन होगा, और वीतराग सम्यक दर्शन आत्मा को परमात्मा बना देता है। बहुत सुंदर बात है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है अपने को। अरहंत को पहचानना है, लेकिन कैसे पहचानना है? शास्त्रों से, स्वाध्याय से, आगम के अभ्यास से। और जब अपन पहचानेंगे, द्रव्य स्वभाव से अरहंत भगवान को पहचाने, गुण स्वभाव से पहचाने। अपन ने 46 गुण देखे भगवान के, कैसे अनोखे गुण थे उनके। कुछ उनके पुण्य के आश्रित थे, कुछ क्षायिक भाव रूप भी थे, कुछ औदयिक थे, कुछ क्षायिक थे, अनोखे थे, सारे के सारे अनोखे थे। कविवर पंडित ज्ञानत राय जी ने तो लिख दिया, कहवत के 46 गुण गंभीर, ये 46 गंभीर गुण कहने मात्र के लिए हैं। हमारे पास ज्यादा कहने की, ज्यादा बताने की, ज्यादा आपका गुणगान करने की क्षमता ही कहां है? आप में 46 गुण नहीं है प्रभु, आप में तो अनंत गुण है। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। हे प्रभु, अत्र विस्मय कह, इसमें विस्मय कैसा या इसमें क्या विस्मय की बात है जो सारे गुण स्थान न मिलने के कारण आपकी शरण में चले आए, और दोषों को चूंकि स्थान मिल चुका था तो अपने निजी पक्के मकान वाले होने से अब जिनका खुद का मकान है वो क्यों किराए का घर ढूंढने जाएगा। उन्होंने सपने में भी आपकी ओर दृष्टिपात नहीं किया, कभी देखा ही नहीं आपको दोषों ने। ये एक अलंकारिक स्तुति है, सुनने में लगता है कि बेचारे लाचार जो दोष थे वो तो चले आए, जो बड़े ठाट से रह रहे थे उन्होंने भगवान की तरफ सपने में भी कभी दृष्टिपात नहीं किया। ये व्याज स्तुति अलंकार है, सुनने में स्तुति नहीं लगती, समझने पर स्तुति लगती है। समझो तो क्या लगता है कि भगवान सर्व गुण संपन्न है और दोष कभी भगवान की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते। भगवान दोषों से पूर्णतः निर्मुक्त है, ऐसे अरहंत भगवान है। आदिनाथ भगवान की स्तुति में मानतुंग आचार्य महाराज ने ऐसा कथन किया है और बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि आचार्य कह चुके हैं कि वास्तविक गुणों से स्तुति करने वाले ही आपके समान बनते हैं। दशम काव्य में भूतैर गुणैर भूवि भवन्तम अभिष्टवन्तः, भूतैहि यथार्थैहि सत्यार्थैहि गुणैहि। भूत शब्द का अर्थ जो विद्यमान गुण है, वास्तविक गुण है, जो सच्चे गुण है, तो ये सच्चे गुणों का सवन है कि आपके पास सारे गुण हैं और आपके अंदर एक भी दोष नहीं है। तो जो अरहंतों को द्रव्य स्वभाव से, गुण स्वभाव से और पर्याय स्वभाव से जान लेता है वो आत्मा को जान लेता है, परमात्मा को जानने वाला आत्मा को जानता है, ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, और उसका मिथ्यात्व नष्ट होता है। तो पहली शरण तो परमात्मा की होगी, परमात्मा को पहचानना पहले आवश्यक है, फिर आत्मा की पहचान करेंगे। यो हि नामार्हंतम द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वैहि, यो हि नामार्हंतम द्रव्यत्व गुणत्व पर्ययत्वैहि परिच्छिनत्ति सखल्वात्मानं परिच्छिनत्ति उभयोरपि निश्चयेना विशेषात्। क्या पंक्ति है, क्या भाषा है! आचार्य अमृतचंद सूरी की संस्कृत बहुत उच्च कोटि की संस्कृत है। एक बार किसी सम्मेलन में विद्वत जन एकत्रित हुए थे और वहां पर संस्कृत भाषा को लेकर संगोष्ठी चल रही थी, तो सब जैन जैनेतर सारे विद्वान वहां उपस्थित थे। एक जैन विद्वान ने किसी महाराष्ट्र के पंडित करमरकर जी से प्रश्न किया, ऐसे आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने एक प्रश्न किया कि पंडित जी आप तो बड़े विद्वान हैं, संस्कृत के महान विद्वान हैं, क्या आपने कभी जैन साहित्य का आलोड़न किया है? तो पंडित जी के मुखमंडल पर मधुर स्मित प्रकट हुआ और वो बोले, क्यों नहीं, मैंने आलोड़न किया है। तो फिर जैन विद्वान पूछते हैं कि भाषा का सौष्ठव कैसा लगा आपको, यानी जैनाचार्यों की संस्कृत आपको कितनी सुंदर लगी? तब उन्होंने धीरे से कहा कि भई हम जैन संप्रदाय से नहीं है इसलिए आपको धीरे से कहते हैं, सबके सामने जोर से नहीं बोल सकते, कि मैंने समय पाहुड़ ग्रंथ है आपका, उसकी आत्मख्याति टीका पढ़ी जो संस्कृत टीका है, समय पावर तो कुंदकुंद आचार्य महाराज ने प्राकृत में लिखा था, पर उसकी जो संस्कृत टीका हमने पढ़ी वो टीका मेरी दृष्टि में संस्कृत भाषा का सर्वोच्च साहित्य है। क्योंकि देखिए साहित्य रचना में जब महाकाव्य लिखे जाते हैं तो महाकाव्यों में बहुत सारे अवयव होते हैं, एक कथा नायिका का होना भी आवश्यक होता है उसमें, और अन्य भी विभिन्न पात्र उसमें अपेक्षित होते हैं, और नौ रसों का समावेश होना भी आवश्यक होता है। सर्वमान्य महाकाव्य दुर्लभ है, पर मैं आपसे बताता हूं कि जब मैंने आत्मख्याति का आलोड़न किया उस समय सार की टीका का नाम आत्मख्याति है, तब मुझे लगा कि केवल एक आत्मा को लेकर इतनी विस्तृत व्याख्या लिखना मेरी दृष्टि में संसार का सबसे बड़ा अचंभा है, सबसे बड़ा आश्चर्य है, ज्ञान का विलक्षण अतिशय है, प्रतिभा की पराकाष्ठा है, और इतनी सुंदर संस्कृत कि पढ़ते हुए जी नहीं अघाता, ये दंडान्वयी टीका है, एक प्रवाह में चलती है। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी क्षुल्लक महाराज जी थे, उनको ये संपूर्ण आत्मख्याति टीका कंठस्थ हो गई थी। लेकिन जिन विद्वान को पंडित करमरकर जी ने ये बात बताई थी, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में प्रस्तावना के अंदर इसका उल्लेख कर ही दिया, भले ही वहां सभा में उन्होंने सबके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि देखो एक बड़े ब्राह्मण विद्वान ने स्वीकार किया कि जैन शास्त्रों में जो आत्मख्याति टीका है वो उच्च कोटि की संस्कृत व्याख्या है, और उनने मुक्त कंठ से निष्पक्ष भाव से प्रशंसा की थी। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री के संग में जैसेन आचार्य महाराज की तात्पर्य वृत्ति टीका पर अधिक बल दिया जाता था, लेकिन जब हमारा पूर्व मिलन जो अमरकंटक में हुआ था उसमें हमने अमृतचंद्र आचार्य महाराज का नाम सुना तो थोड़ा हमें विस्मय हुआ कि आचार्य श्री के मुख से अमृतचंद्र आचार्य महाराज का नाम इस प्रकार से निकल रहा है। फिर उन्होंने हमें कुछ पंक्तियां और कुछ रेफरेंसेस भी दिखाए आचार्य महाराज ने कि अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, तो उसका संग्रह भी अब हमारे पास यहां पर बैग में रखा हुआ है, वो भी उन्होंने आचार्य महाराज ने हमें दिया। तो अमृतचंद्र आचार्य महाराज बड़े महत्वपूर्ण आचार्य हुए थे दिगंबर जैन परंपरा में। उनकी ये पंक्ति देखिए आप अरहंत भगवान के विषय में, वो क्या कह रहे हैं कि जो निश्चय से अरहंत भगवान के विषय में द्रव्य स्वभाव गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव से जानकारी प्राप्त कर लेता है वह मनुष्य नियमतः आत्मा का परिचय प्राप्त कर लेता है। क्यों? तो उसका हेतु देते हुए वो लिख रहे हैं निश्चयेन, निश्चय की अपेक्षा से उभयोरपि अविशेषात् दोनों में समानता है, अरहंत भगवान के स्वरूप में और आत्मा के स्वरूप में समानता है। और समानता की पहचान मिथ्यात्व को हटा देती है। भिन्नता की पहचान तो अनिवार्य है ही, उसका निषेध कथमपि कदापि क्वचिदपि नहीं है, लेकिन भिन्नता के साथ समानता का परिचय होने से मिथ्यात्व नष्ट होता है। बहुत गहरी बात है कि अरहंत भगवान में और अपनी आत्मा में कहीं ना कहीं कोई समानता पड़ी हुई है। उसकी पहचान होने पर मिथ्यात्व समाप्त हो जाता है, सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाता है। वो कैसी क्या समानता है, एक उत्कंठा होती अंदर, कहां भगवान और कहां भक्त, कहां प्रभु और कहां ये अणु के बराबर छोटा संसारी प्राणी। भावों की अपेक्षा कितना छोटा है, अणु के समान है प्रभु की तुलना में, लेकिन तब भी कोई ना कोई समानता है दोनों में। अपन सब जो भी जैन शासन से, जैन मान्यता से परिचित हैं, वो सब जानते हैं कि वो भी पहले मेरे समान थे, लेकिन आज वो है और मैं रह गया हूं। वो जो कुछ बता रहे हैं उनको मुझे अच्छी तरह समझ लेना है, स्वीकार लेना है, और जैसा वो चलने को कह रहे हैं वैसा मुझे चलना है। अपनी बुद्धि नहीं लाना है बीच में, इस बुद्धि ने ही अपने को संसार में भटकाया है। अपन अपने मिथ्या विवेक से गर्वित होकर अविवेकी बन जाते हैं। वो केवली भगवान है, वो अरहंत प्रभु है, उनको जो दिख रहा है वो अपने को बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और वो जो देख करके अपने को रास्ता बता रहे हैं वो अपने को नहीं दिख सकता। इसलिए आज्ञा प्रधानी होना आवश्यक है उनके प्रति। वो जो कह रहे हैं, जो आज्ञा, बस इतनी विनय होना अत्यावश्यक है। विनय के बिना मोक्ष का द्वार नहीं खुल सकता। आचार्य बट्टकेर स्वामी ने और आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो ये कह दिया, विनो मोक्षद द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। विनय के बिना नहीं खुल सकता, ये तो छोड़ी दो, दूसरी बात हो गई है। विनय ही मोक्ष का द्वार है। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मा विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महा सुख को। ओम नमो रते भगवते श्रीमते तीर्थकृते परम भट्टारकाय महादेवादिदेवाय अर्हत परमेश्वरे अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ऐं अर्हम सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्यध्वनि रूपायै स्याद्वाद केतनायै अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणाये जगन मातृ स्वरूपाये भगवती जिनवाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैः धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे मुनिराज महव्यजे। ओम ह्रीं ओम ह्रूं रौं ह्रः आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो सर्व गुरुभ्यो नर्घ्य पद प्राप्तैर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जैनं जयतु शासनम्।